الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا قولا سديدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آداب زندگی کے اندر گفتگو کے آداب چل رہے تھے، بولنے کے آداب چل رہے تھے، اور کئی سیٹنگ سے ہم اس کی تفصیلات میں جا رہے ہیں کہ گفتگو کرنے کے، بولنے کے، بات چیت کرنے کے کیا آداب ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور علماء اور مشائخ نے اس کو اخذ کر کے، ایکسٹریکٹ کر کے قرآن و حدیث سے ہمیں بالکل ایزی فارم میں سامنے کر رکھ دیا کہ اس طرح سے یہ ٹپس ہیں، یہ رولز ہیں، یہ آداب ہیں. کئی آداب ہم کر چکے، آج جس ادب سے شروع کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی دو شخص یا تین شخص ہوں تو وہاں پہ کبھی بھی دو شخص آپس میں بات نہ کریں اس انداز میں کہ جو تیسرے کو سمجھ نہ آئے. وہ انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہستہ آواز میں کی جائے بات، یعنی وسپر کیا جائے، سرگوشی کی جائے. وہ انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی لینگویج میں بات کی جائے جو تیسرے کو سمجھ نہ آئے. کہ اگر تیسرا شخص فار ایگزامپل انگلش نہیں سمجھتا تو انگلش میں بات کرنی شروع کر دی جائے، یا کوئی اور لینگویج اس نہیں سمجھتا اس میں بات شروع کر دی جائے، یا کوئی نیٹو لینگویج، تین بندے ہیں اور وہاں پہ دو کی نیٹو لینگویج ایک ہے، اس میں بات کرنا شروع کر دیں. تو کوئی بھی ایسا انداز کہ تیسرے کو سمجھ نہ آئے، تیسرے کو اندازہ نہ ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ ہنسنے والے انداز کو اپنانا یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے تیسرے کے ذہن میں شبہات جنم لیتے ہیں اور مختلف غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر دو شخص بات کر رہے ہیں آپس میں یا پبلک ایڈریس ہو رہا ہے تو اس میں کوئی شخص بیچ میں نہ بولے، درمیان میں، مطلب کہ پبلکلی اگر بات ہو رہی ہے تو درمیان میں کوئی کوسچن کر دینا، درمیان میں کوئی اپنی بات کر دینا، رائے دے دینا، تو یہ ادب، محفل کے ادب کے خلاف ہے. اور اگر دو شخص بات کر رہے ہیں تو تیسرا شخص انٹرپٹ نہ کرے، انٹرفیئر نہ کرے. اور یہ پہلے بتایا تھا کہ کئی بار ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تیسرے کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ بہتر ہوتی ہے، کئی بار بہتر بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی کوسچن کر رہا ہے، دوسرا اس رپلائی کر رہا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں کر رہا، تو تیسرے کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس کا آنسر کر دوں. تو اس میں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اجازت لینا، اور غلط طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں بول پڑنا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے. مثال کے طور پہ کئی بار ہوا ایسا کہ کوئی مسئلہ کسی سے پوچھے ہیں، ساتھ تیسرا شخص بیٹھا ہوا ہے تو درمیان میں انٹرفیئر کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہے، حالانکہ اس سے نہ پوچھا جا رہا ہے، نہ اسے بیک گراؤنڈ پتہ ہے، نہ اس کو تفصیل پتہ ہے، وہ درمیان میں انٹرفیئر کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنے نالج کو بھی، یہ بھی ایک طریقہ ادب ہوتا ہے کہ اپنے نالج کو اپنے تک محدود رکھنا، جب تک کوسچن نہ کیا جائے، پوچھا نہ جائے، یہ اب تک ضرورت نہ ہو، اس میں بھی طریقے سے آگے بڑھے کہ ادب سے اجازت لے کے. اچھا، کب، جب کوئی شخص کوئی بات کرنے لگے، دوسرا شخص یعنی کہ بات کرنے لگے، اس کی بات کو سننا بھی چاہیے، یہ بھی ادب ہے. وہ انشاءاللہ اس کا علیحدہ ٹاپک ہوگا کہ بات سننے کے آداب، لیکن یہاں پہ بھی اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا شخص بات کرنے لگے تو ٹوکے نہیں کہ نہیں بات کرو، اس کی بات کو سن لے. اب یہ اس کو خیال کرنا چاہیے بولنے والے کو کہ اتنی لمبی بات نہ کرے کہ دوسرا بندہ اکتا جائے، फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करना है टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, लेकिन क्वेश्चन को पूरा सुनना जब तक वो पॉज ना दे दे, जब तक वो खत्म ना कर ले, तो ये अदब है। बेशक दरमियान में ही फील हो जाए कि ये गलत पूछ रहा है, दरमियान में ये फील हो जाए कि ये सही बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको बात मुकम्मल करने देना और फिर उसको बात करना, उसका जवाब देना। और इसी तरह जब जवाब दिया जा रहा हो तो अब अगले को तहम्मुल दिखाना चाहिए कि पूरी बात सुने, क्योंकि अगर वो भी पूरी नहीं सुनेगा तो फिर कम्युनिकेशन पूरी नहीं होती, फिर कन्फ्यूज होती हैं, फिर गलतफहमियां जन्म लेती हैं। तो दोनों यानी सुनने बोलने वाले और सुनने वाले को, दोनों लोगों को एक दूसरे की बात मुकम्मल सुननी चाहिए, बात मुकम्मल होने से पहले काटना नहीं चाहिए बात को, और खामोश भी नहीं कराना चाहिए कि बस अब खामोश हो जाए। तो ये बात हम कर चुके हैं कि ये भी बात मेंशन है कि बहुत लंबी स्टोरी सुनाना यानी कि वाक्या बैकग्राउंड में है किसी बात के लिए, तो उसको इतना तूल देना कि अगला बंदा उकताज है, उसके एक 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 डिटेल में चले जाना। हालांकि वो फॉर एग्जांपल कोई मसला पूछना है तो उसमें वाक्या बताना पड़ता है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो आप इसका बताएं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिंक्ड है उस वाक्य उस मसले से वो बताएं, बहुत डिटेल में चले जाना कि उकताहट पैदा हो जाए या वो कंफ्यूज हो जाए कि इसमें से कौन सी बात ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या पूछ रहा है। तो ये सारी की सारी बोलने के आदाब में है, इसको सीखना चाहिए। और इसी तरह जवाब देना हो अगर किसी के सवाल का, तो वो भी टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें भी बहुत तूल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रहे कि क्लैरिफाई कर दे, क्योंकि वो अगले के लेवल के मुताबिक, तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन एक इतनी बात ज़हन में रहे कि इस सारे की सारी चीज़ें सीखने की हैं। गुफ्तगू एक सीखने वाला स्किल है, सीखने वाली चीज़ है कि कितना बोलना है, कब बोलना है, और ये उसके दो पार्ट्स हैं सीखने के। एक तो ये कि इल्म यानी जिस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये डिस्कस ही ना किया जाए तो कैसे पता चलेगा ज़िंदगी में कि ये भी कोई सीखने वाली चीज़ है, और दूसरा ये कि किसी के अंडर गाइडेंस अगर रहे तो फिर भी इंसान सीख जाता है कि वो कितना कम बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं। तो इसलिए किसी अल्लाह वाले के साथ रहना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि उनकी इस चीज़ को भी लेता है इंसान, इस चीज़ से भी सीखता है। और इसी तरह जब कोई क्वेश्चन आंसर हो जाए तो उसमें बता देना चाहिए कि क्वेश्चन में समझ आया या नहीं आया, यानी आंसर में समझ आया या नहीं, अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो पूछ ले, खामोशी इख्तियार कर जाना आगे से बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि समझ आ गया, और फिर बाद में कहना कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आया था, तो ये उसका कसूर है, क्यों नहीं उसने कहा क्लैरिटी से कि मुझे नहीं समझ में आई बात, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो कम्युनिकेशन में बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत टू द पॉइंट, बहुत तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो उसकी कई एग्जाम्पल पहले भी दी थी, आज भी आखिर में कुछ देता हूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ से कि कैसे बोलता है इंसान, उस पर क्या कन्फ्यूज जन्म लेती है। इसी तरह जब इंसान घर में दाखिल हो तो इजाजत लेके दाखिल, अपने या किसी के, इवन अपने घर में भी अनाउंस करके आना चाहिए, वो अनाउंसमेंट किसी तरह भी हो सकती है, नॉक करके, ऊंचा सलाम करके, किसी तरह भी अनाउंस कर ले, अगर दूसरे शहर से आ रहे हैं तो कॉल करना, कॉल कर, जो फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो उससे कॉल कर ले कि मैं आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो अनाउंस करके जाना ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते थे तो बताते थे पहले कि मैं घर आ रहा हूँ, उस दौर में चूंकि कम्युनिकेशन ऐसी नहीं थी तो उसका तरीका ये था कि मस्जिद में चले जाते थे पहले, और फिर ताकि पता चल जाए इलाके वालों को काफिला आ गया। तो अनाउंसमेंट के बगैर घर नहीं जाना चाहिए, अपने भी और किसी के भी, और किसी के भी तरीका वही है कि वो नॉक करे या इजाज़त ले, और जब अंदर से पूछा जाए कि कौन आया है तो उसमें पहले सलाम करना चाहिए और फिर नाम बताना चाहिए, ये तरीका है कि अस्सलाम वालेकुम, या अंदर से अस्सलाम वालेकुम कहा गया तो वालेकुम अस्सलाम और फिर नाम बताए। कि मैं ये हूँ, ये ना कहे मैं हूँ या दरवाजा खोलो, ये सही तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी कई बार सख्ती फरमाई इस चीज पे। अगर किसी ने कहा मैं हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा कि मैं क्या, मतलब कि नाम बताओ अपना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि मल्टीपल टाइम इसके डिस्कशन के बावजूद जिंदगी में वैसे की वैसी रहती है, कि फिर वही चीज दोहराई जा रही होती है। इस चीज को बहुत मामूली समझा जा रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसानों में डिफ्रेंशिएट कर देती हैं दीन के हवाले से। इसी तरह खत भी एक कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें भी इन चीजों में का ख्याल करना चाहिए कि वर्ड्स क्या चूज कर रहे हैं, या ईमेल्स जैसे अब होती हैं तो उसमें भी वर्ड्स को चूज करना कि क्या बात की जा रही है। तो ये सारी बातें कम्युनिकेशन की हैं, तो उसमें भी ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और उसमें भी यही तरीका रखना चाहिए कि सलाम करना चाहिए पहले ईमेल में भी, और फिर नीचे अगले को मुखातिब करना चाहिए। ये तरीका है। इसी तरह दूसरे शख्स को अच्छे लकब से पुकारना, अच्छे नाम से पुकारना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब साथ रहने से अंदाजा हो जाता है कि अगले को क्या चीज पसंद है, कि किस तरह से पुकारना उसको पसंद है। तो जो भी उसको सबसे पसंद अल्फाज हैं उससे पुकारे। और ये बात पहले जिक्र कर चुके हैं आदाब में कि बड़े को नाम से नहीं पुकारना चाहिए। वो दीन में बड़ा हो, वो दुनिया के ओहदे के हिसाब से बड़ा हो, वो उस्ताद हो, वो शौहर हो, जो भी है उसको नाम से बाय नेम नहीं पुकारना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अतीक कह के पुकारते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक कह के पुकारते थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को असदुल्ला कह के पुकारते थे, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्ला कह के पुकारते थे। तो उनके और नाम रखे हुए थे जो कि जिनके मायने भी अच्छे हैं और उसको पसंद करते थे। तो इसी तरह कोई भी नाम पसंद हो तो वो रखा जा सकता है, बाय नेम बस नहीं पुकारना चाहिए बड़ों को खास तौर पे। और दूसरों को तो पुकार सकते हैं बाय नेम, लेकिन अच्छे नाम से। इवन इसी तरह हस्बैंड वाइफ भी बाय नेम तो ना पुकारें, यानी वाइफ कम से कम हस्बैंड को बाय नेम ना पुकारे, और अगर पुकारना भी है तो साहब लगाए या कोई इज्जत वाला लफ्ज साथ लगाए, या दूसरा तरीका है कोई पसंदीदा नाम जो शौहर को पसंद हो वो उससे पुकार लें, तो ये किया जा सकता है। इसी तरह जब कोई शख्स दूसरे से मिले तो तारुफ जरूरी है, यानी कि इंट्रोडक्शन। अब इसकी दो सूरतें, कि वो शख्स पहले से जानता है तो जैसे वो बताया कि घर में कोई आया है, अंदर वाले को नहीं पता बाहर कौन है, तो इंट्रोडक्शन अपना कहना कि मैं हूं, यानी कि नाम लेके, तो ताकि इंट्रोड्यूस हो जाए कि कौन बाहर है। दूसरा सूरत ये हो सकती है कि उस शख्स से नहीं मिला या बहुत रेयर मिला है कभी पहले, तो अब उस चीज में ख्याल करें कि उसे ऐसा तारुफ कराए कि उसे सब पता चल जाए कि कौन हूं। और मशाइख इसका बड़ा ख्याल करते हैं, बुजुर्ग इसका बड़ा ख्याल करते हैं, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि अगर कोई शख्स पहली बार आया है तो ये वो पूछ, जाहिर बात उसके लिए एक नया बंदा है तो पूछते हैं कौन है, तो बस इतना कह देना कि ये फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब है, ये कोई तारुफ नहीं है। बल्कि उसका नाम बताना, उसकी जगह बताना, उसके काम का नौयत बता देना, तो ये जितना ब्रीफ भी हो और एक कामिल सा इंट्रोडक्शन हो, तो इस तरह का ख्याल करना चाहिए। और पहले से जहन में रख भी लेना चाहिए कि अगर मुझसे कोई पूछेगा यानी तारुफ चाहिए हो तो मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उन्हें करा सकूं चंद अल्फाज के अंदर, जिससे उन्हें पता चल जाए कि कौन। और इसमें नहीं शर्माना चाहिए कि अपनी दुनियावी हैसियत को बता दे, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है तो बता दे मैं डॉक्टर हूँ, या अपनी फील्ड का बता दे। नीयत ऑब्वियसली तकब्बुर की ना हो कि मैं बड़ा हूँ, बल्कि ये हो कि इसे पता चल जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान से उसके मर्तबे के मुताबिक डील करते थे। और ये सुन्नत है कि हर शख्स का मर्तबा होता है दुनियावी लिहाज से या दीनी लिहाज से, उसको उसके मुताबिक डील करना होता है। और जब तो इंट्रोडक्शन नहीं होगा, वो किसी को कैसे पता चलेगा ये कौन है, ये किसका क्या मर्तबा है। शक्ल से तो अगर यानी कि कम ही अंदाजा होता है कि कौन कौन दुकान पे बैठता है और कौन मुफ्ती है और कौन डॉक्टर है, वो तो कोई तारुफ ही कराएगा तो पता चलेगा कि क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो इसलिए तारुफ का ख्याल करना चाहिए, कि पूछे आप कौन तो पूरा नाम पूरा अपना तफसीली तारुफ कराना चाहिए, और उसमें शर्माना नहीं चाहिए। और लेकिन सिर्फ जहन में ये रहे कि तकब्बुर की या बड़ाई की नीयत ना हो, बल्कि ये हो कि अदब है, अखलाक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तरीका है। इसी तरह हमेशा सच बोलना, लेकिन उसमें भी तरीका ये हो कि वो हार्श ना हो, यानी कि कई बार अंदाज ही या अल्फाज का चुनाव ही एक बात को हार्श बना देता है, सख्त बना देता है या नरम बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मियाँ बीवी आपस में डील कर रहे हैं तो कोई बात ऐसी करनी है जो कि सच भी हो। फॉर एग्जाम्पल, बीवी ने कुछ बताना है दिन का, और फॉर एग्जाम्पल घर में कोई लड़ाई हुई, कोई सास की बात, कोई नंद की बात शौहर को बतानी है, तो कोशिश करनी चाहिए तरीका ऐसा हो जिसमें हार्शनेस ना हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हालांकि सच बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी अंदाज और अल्फाज कुछ ना हो, बहुत एहतियात से होना चाहिए। और ये एक तरीका होता है, ये भी सीखने वाली चीज़ है कि सॉफ्ट वर्ड्स में और सॉफ्ट अंदाज में कैसे बात की जाती है, और यहीं से फर्क हो जाता है एक इंसान के अच्छे अखलाक का बुरे अखलाक। जिसको हम कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके अच्छे अखलाक हैं, एक्चुअली वो उसके वर्ड्स, उसका अंदाज अच्छा होता है। एक दूसरा शख्स है, बिल्कुल फ्लैट चेहरे के साथ मिल रहा है, तो हम कहते हैं वो, उसका अखलाक अच्छा नहीं, वो अच्छे तरीके से नहीं मिलता, तो उसमें उसने कुछ नहीं किया, बस उसके या तो एक्सप्रेशन या उसके वर्ड्स या उसका अंदाज अच्छा नहीं था, तो ये मैटर करती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में भी ये फरमाया, जब हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, तो अल्लाह ताला ने चंद नसीहतें उनकी कुरान में जिक्र कर दी, तो उसमें एक ये भी था कि मुंह फुला के बात ना किया करो दूसरे से, तो ये एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, तो इसको इसका ख्याल करना चाहिए। तो स्माइल चेहरे पे रखना, चेहरे पे अच्छे एक्सप्रेशन रखना, बोलते हुए अच्छे अल्फाज, सॉफ्ट अल्फाज बोलना, सही अंदाज से बोलना, इसका ख्याल करना चाहिए। और अक्सर ये ख्याल बाहर तो कर लिया जाता है, लेकिन घर में नहीं किया जाता। हालांकि घर में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, घर एक यूनिट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये इसलिए ताकि सुकून मिले एक दूसरे को। तो सुकून की जो पहला फॉर्म होती है जिससे सुकून मिलता है, वो एक दूसरे को देखने से है। तो देखने में जाहिर बात एक्सप्रेशन सामने आ रहे होते हैं कि वो कैसे बैठा है, यानी कैसे अंदाज से मुझसे बात कर रहा है, तो एक दूसरे को स्माइलिंग फेस देना, एक दूसरे पे फ्लैट ना रहना चेहरे के हिसाब से, यानी कि दूसरा बात कर रहा फ्लैट अंदाज से जवाब दे दिया, या सलवटें हों चेहरे के ऊपर, तो ये अंदाज मुनासिब नहीं है। बल्कि एक स्माइल हो चेहरे पे, ताकि एक दूसरे से खुशी हो, दूसरे से एक लगाव पैदा हो। और ये बात भी गालिबन पहले जिक्र की थी कि जब कोई बात की जाए तो कंफर्म कर लीजिए कहने से पहले, और अगर नहीं कंफर्म तो बताया जाए कंफर्म नहीं है। गालिबन के वर्ड, यानी कुछ वर्ड होते हैं जिससे शो हो जाता है कि गालिबन, यानी कि गालिब गुमान होना, या कि मेरा ख्याल है, ये सारे वर्ड्स हैं जिससे पता चल रहा है कि कंफर्म नहीं है बात, बल्कि शायद ऐसे। इसी तरह जो मजाक करना एक दूसरे से, ये जायज़ है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उसी लिए करना भी चाहिए, लेकिन उसमें दो चीज़ों का ख्याल हो, एक तो सच हो, झूठ ना हो, और दूसरा ये कि दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, कि अगर मजलिस में है तो किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इसमें से कोई एक शख्स भी इसके दिल ना टूटे मेरी इस बात से, और अगर के ख्याल है, गालिब गुमान है कि ये टूटेगा किसी का दिल या तकलीफ होगी, तो फिर ना करे, ना करना बेहतर है बजाय के मजाक करने से। और इसी तरह दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारना, बुरे नामों से पुकारना जो उसे बुरा लगता है, तो जहां ये बात हुई कि अच्छे नाम रखना दूसरों के, वहां इसी तरह मना है दूसरों के बुरे नाम रखना और बुरे नाम से पुकारना। और बुरे की क्या डेफिनेशन है? जो दूसरे को बुरा लगे बस, या उसके मायने बहुत बुरे हों आम माशरे के अंदर, या उसको बुरे लगते हों अल्फाज, तो ये दोनों चीजें बद अखलाकी में आती हैं। और गीबत और बोहतान, ये दो चीजें तो पूरे टॉपिक हैं, पूरा एक मौजू है, लेकिन ये जहन में रहे कि गीबत से बहुत बचे, बोहतान से बहुत बचे। दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि दूसरे की बुराई करना उसकी एब्सेंस में, तो अगर तो वो चीज उसमें मौजूद है तो वो बोहतान होगी, और अगर अगर मौजूद नहीं है तो भुगतान होगी, अगर वो मौजूद है तो गीबत हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज का बहुत एहतियात करना। और उसका एक उसूल जहन में रहे, वो उसूल ये है कि कभी भी तीसरे बंदे की बात ना करें। तीसरे बंदे से क्या मुराद है, जो महफिल में ना हो, जो सामने ना हो। ये उसूल बना ले जिंदगी का, उसकी बात ही ना करें। कोई दो बंदे डिस्कस कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, तीसरे बंदे की डिस्कशन आए उसकी छोड़ दे बात। ये उसूल होगा तो फिर इंसान सोचेगा हमेशा बात करने से पहले, कि जब अगर मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। बुरी होगी तो नहीं करेगा, अच्छी होगी तो करेगा। लेकिन अक्सर कम ही होता है कि दूसरे की अच्छाई की जाती है, अक्सर बुराई की जाती है। तो गीबस, तो स्टेटमेंट क्या है, असूल क्या है, गीबस से नहीं बचा जा सकता इल्ला ये के सिवाय इसके कि जब तीसरे की बात करनी छोड़ दी जाए। ये है असूल कि गीबस से नहीं बचा जा सकता, पक्की बात, हत्ता के तीसरे की बात करनी छोड़ दी जाए। तो ये रूल अपनी जिंदगी में अपना ले, सोच ले, रख ले, इसको पल्ले से बांध ले और इसको आम करे कि जब कोई तीसरे की बात करने लगे कहो के पास बात को बदल दे वहां पे। अब कुछ वाकयात सुनाते हैं ताकि पता चले कि इस चीज की क्या अहमियत है। कुछ पिछली बार सुनाए थे कि किस तरह बुजुर्ग तरबियत करते हैं अगले की इन बातों पे, एक मामूली बातें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेख थे, उनके पास एक शख्स आया। अब उन्होंने देखा अपनी महफिल में कि वो शख्स बैठा हुआ है और वो नया है। नया से मुराद है कि दूर से आया, यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सफर करके किसी काम के लिए आया होगा। तो उन्होंने उसे बुलाया कि बात सुना, उससे पूछा क्यों आए आप, कैसे आए। पहले तारुफ किए, पूछा आप कौन है और पूछा कैसे आए। तो उसने बता दिया कि मैं फलां हूँ और मैं आपसे मिलने आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जज़ाकअल्लाह, वो बैठ गए। अब जब मगरिब हो गई, यानी कि वो दिन के वक्त किसी वक्त आए होंगे, जब मगरिब हो गई तो उन्होंने आके फिर कहा कि एक्चुअली मैं आपसे कुछ कोई मसला है वो डिस्कस करने आया हूँ, उसका हल लेने आया। अब उन्होंने आगे से जो कहा तो वो एक तरबियत के लिए अल्फाज सुनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक वक्त और जगह होती है। अब ये जो आपने कहा, ये जो मगरिब के बाद का वक्त है, ये इसके लिए नहीं है कि मैं आपका मसला सुनूं और उसका हल बताऊं। आप जब आए थे, मैंने स्पेसिफिकली आपको बुला के पूछा कि आप क्यों आए, तो आपने कहा मैं मुलाकात के लिए आया हूँ, मैंने से आपकी ज़्यारत करने आया हूँ। और अब आप कह रहे हैं मैं एक मसला है, मैं वो डिस्कस करने आपसे आया हूँ। तो पहले आप ये तय करें कि उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया, हालांकि वो मैंने जो पूछा था उस वक्त सही तरह बता देते। अब उन्होंने तरबियत के लिए उनकी काफ़ी सख्त अल्फाज भी कहे, कहा कि क्या आम बंदा ये समझ रहा है कि हम उनके मातहत हैं, कि जब वो कहेंगे हम उनका काम कर देंगे। कहते ऐसी बात तो नहीं है, हर चीज़ का एक निज़ाम अवकात होता है, एक स्केड्यूल होता है, उसमें फिक्स होता है। अब मगरिब का टाइम के वक्त में मेरा नवाफिल का है, मेरा जिक्र अस्कार का है, फिर मैंने जो मेरे यहाँ पे पहले हल्के से में बैठे हुए लोग हैं उनको तो कुछ तलकीन करनी है बातें, उनको कुछ बयान करना है, उसके बाद मैंने अपनी किताबत खतो किताबत करनी है। तो एक स्केड्यूल है मेरा। मैं इसीलिए कहते हैं, मैंने जब कोई आता है मैं उससे पूछता हूँ कि आप क्यों आए, क्योंकि वो जब वो बताता है कि मेरा ये काम है तो मैं उसको उस स्केड्यूल में वहाँ फिट कर देता हूँ। तो आप अगर उस वक्त मुझे बता रहे थे कि आप इस काम के लिए इतना सफ़र करके आए हैं कि मुझे कोई मसला है और मैं उसका हल तलाश करने आया हूँ, तो मैं वहाँ पे उस स्केड्यूल में जहाँ मैं ये काम करता हूँ आपको फिट करता, आपको बुलाता वहाँ पे और वहाँ आपकी बात सुनता। और कई बार लोगों के मसले ऐसे होते हैं जो पब्लिकली नहीं डिस्कस किए जा सकते, तो उसमें फिर इंडिविजुअली बुलाना पड़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब आपने जो अब बताया और आप चाह रहे हैं अभी हो ये मसला हल, तो ये अभी नहीं होगा, अब ये अगले स्केड्यूल के अंदर आएगा और उसके लिए आप वेट करें या दोबारा कभी आए। लेकिन इस गलती को दोबारा ना दोहराइएगा कि जो आपने की है, सिर्फ बोलने में गलती, अब देखने में मामूली सी गलती, लेकिन ये चीज़ सीखनी होती है। कोई शर्माने वाली बात नहीं होती कि जब कहा जा रहा है कि आप क्यों आए तो सही तरह बात करें कि मैं इसलिए आया हूँ। लेकिन आम बंदे के ख्याल में ये मामूली सी बात है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये एक मामूली सी बात होती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती कि इसने बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। उनकी ज़िंदगी में कोई स्केड्यूल भी नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में कोई एम्स ऑब्जेक्टिव बड़े नहीं होते। तो इसलिए कोई स्केड्यूल नहीं होता, टाइम बहुत फारिग होता है, तो उनके नज़दीक आम सी बात है कि कोई कभी भी कुछ कह दे, क्योंकि उनके इतनी बिजीनेस नहीं होती। लेकिन जिसके ज़िंदगी में कोई एम्स होते हैं तो उसने स्केड्यूल बनाया होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और तभी वो काम अचीव कर रहा होता है, तभी वो बड़े बड़े एम्स को अचीव कर रहा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को उसने एक टाइम रखा होता है। इसी तरह उनकी एक शेख थे, उनकी महफिल में एक तालिबे इल्म ने, वो इसी तरह बयान कर रहे थे, कुछ तलकीन कर रहे थे, तो एक शख्स ने दरमियान में उठ के अपना अपनी बात करनी शुरू कर दी, गालिबन कोई ख्वाब था, उसने आना शुरू कर दिया कि मैंने ये ख्वाब देखा। अब ये बिल्कुल ही बेअदबी और महफिल के आदाब के खिलाफ, तो उन्होंने फौरन उसको टोका कि ये क्या तरीका है बात करने का, कि बजाय इसके कि तुम इंतज़ार करो कि गुफ्तगू ख़त्म हो और ये टॉपिक ख़त्म हो जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो तुमने पहले दरमियान में बात करनी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई भी अक्लमंद शख्स, कोई इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे ही उसका बिहेवियर नहीं होता कि इस तरह से दरमियान में बोलना शुरू कर दे दूसरे की बात मुकम्मल होने से पहले। और दूसरी बात, तुम्हारी इस बात से लग रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं, जो तुम बात करना चाह रहे हो उसकी ज़्यादा अहमियत, तो मेरी तलकीन, मेरे बयान, मेरे सारे आदाब सिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें आदाब सिखा रहा हूँ, तुम्हें तलकीन कर रहा हूँ, और तुम दरमियान में अपनी बात कर रहे हो, जो गोया कि मेरी उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जो तुम ये पूछना चाह रहे हो ख्वाब की ताबीर, अब ये उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, आइंदा इससे बाज रहना इस तरीके से, अब जब तुम दोबारा आओगे या दोबारा तुम्हारे तरीके से बात करोगे तब मैं इसका जवाब दूंगा। तो ये सारा रद्द अमल अदब किस खाने के लिए होता है। अच्छा, यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि जहन में ये क्वेश्चन हो सकता है राइज हो जाए कि इस तरह तो दूसरे का दिल टूटता है, तो ये जहन में रहे कि आम तौर पे ये बिहेवियर आम बंदे के लिए नहीं वो शो करते, मतलब ये कि कुछ शख्स आ गया है जो जो स्टूडेंट ना हो उनका, तो और वो आके कोई इस तरह की बेअदबी कर दे या इस तरह के कोई मैनर्स का ख्याल ना करे, तो आमतौर पर उसको वो बर्दाश्त कर लेते हैं और उसको उस पर रिएक्ट नहीं करते, और क्योंकि वो आम शख्स है, वो कोई बात पूछने आया उसे नहीं पता, आमतौर पर रिएक्ट किया जाता है जो जो ऑलरेडी जेर तरबियत होता है, क्योंकि उसकी तो तरबियत करनी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला पूछेंगे क्यामत के दिन इसकी तरबियत क्या की, तो उस वक्त खामोशी नहीं रखी जाती, क्योंकि ये इस वक्त दूसरा मामला है कि अल्लाह ताला यहाँ पूछेगा क्यों नहीं उसको कहा, क्यों नहीं उसको अदब सिखाया, तो इसलिए वो आमतौर पर ये रिएक्शन उनको शो किया जाता है कि जो ऑलरेडी जेर तरबियत होते हैं। तो इसी तरह एक बार एक शेख की महफिल में एक नया शख्स आया, तो उन्होंने वही पूछा कि आप कहाँ से आए और आपके आने का मकसद क्या, आपका नाम क्या, यानी तारुफ किया, लेकिन उसने हेजिटेट किया बोलने में, बताने में, मुकम्मल नहीं बताया, जैसा भी मैंने जिक्र किया कि मुकम्मल बताना चाहिए। तो उन्होंने फिर आगे उसे ये बात सिखाई कि भाई कि मतलब कि इस तरह बोलना चाहिए कि जब कोई सवाल किया जाए, फिर तारुफ कराया जाए तो अपना तारुफ पूरा कराना चाहिए, उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, आप इतना पैसा खर्च करके, इतना वक्त लगा के महफिल में आए, मुझे पता ही ना चलेगा कि आप क्यों आए, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, तो आने का मकसद उसका हल नहीं होगा जैसा होना चाहिए, और मुझे कोई इल्मुल गैब भी नहीं कि आप ना बताएं और मैं उस चीज़ को जान लूँ कि आप क्यों आए हैं, तो इसलिए वो जब बोलने का कहा जाए तो बोलना चाहिए और क्लियरली बोलना चाहिए ताकि पूरा मकसद हल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद उसने, चूंकि उस तरबियत नहीं थी, उसका नादा नहीं था, उसने फिर भी खामोशी और पूरी तरह नहीं बोला, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को लोगों के सामने बयान किया कि इसीलिए मैं सख्ती करता हूँ कि लोग नहीं इस चीज़ को मामूली समझते, कि मेरे कहने के बावजूद जिस शख्स खामोशी इख्तियार की हुए तो अब बताएं कि किसका नुकसान होगा, मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ, ये भी इरिटेट हो रहा है। और उन्होंने एक मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि ऐसे ही है कोई खामोशी के साथ दूसरे को पिन चुबा रहा हो, अब जाहिर बात है पिन चुबाने से अगला शख्स बोलेगा, चीखेगा, तकलीफ का इजहार करेगा, तो बिल्कुल इसी तरह इसकी खामोशी मुझे पिंच कर रही है, और जब मैं जो इसको आगे से अदब सिखा रहा हूँ ये एक्चुअली उसका इजहार है जो तकलीफ मुझे हो रही है, तो जो और फिर उन्होंने कहा कि लोगों से आप खुद बताएं कि अदब सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, कि लोग इसको इतना मामूली ही समझते हैं, तो मैं क्यों ना इस चीज़ को बार बार इजहार करूं। इसी तरह एक शख्स ने इन्वेस्टिगेशन के बगैर, तहकीक के बगैर, सिर्फ शुबे पे एक बात कर दी, तो उस पे भी वो शेख थोड़ा उसकी तरबियत की उस शख्स की कि ये कैसे तुमने ये बात कर दी। जैसा पहले भी एक वाक्य जिक्र किया था कि एक शख्स ने ऐसे ही आके कह दिया था कि उन्होंने पूछा वो शख्स कहाँ है, उन्होंने कहा उसने कहा वो सो रहा है। तो उसने कहा कि वो ने समझे शायद वाकई सो रहा है, लेकिन बाद में चला पता चला वो जाग रहा था। तो उन्होंने फिर से डांटा कि मैंने तुमसे पूछा वो कहाँ है, तुमने कहा सो रहा है। अब तुम्हें नहीं पता था क्यों कहा सो रहा है, तुम कहते मुझे नहीं पता, तुम कहते मैं देख के बताता हूँ। अब सोने ये कहने की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, मैंने काम उससे लेना था, वो काम मैंने छोड़ दिया और मैं अधूरा काम करके मैं बैठ गया, और ये जो तकलीफ हो रही है ये अलहदा, जो तुम्हें कह रहा हूँ वो अलहदा। तो इतनी डिफिकल्टीज पैदा हो रही हैं तुम्हारी सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसे देने की वजह से। तो इसी तरह ये भी कि एक शख्स ने ऐसी कोई बात कर दी, तो उन्होंने कहा ऐसी क्यों कर दी बगैर तहकीक, तहकीक करते हैं मुझे बताते हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि इंसान को इस चीज़ की कोई इस चीज़ का कोई एहसास नहीं कि बोलने को से पहले सोचना चाहिए, और बोलने से पहले वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए, और थोड़ा ख्याल कर रख के सोचना बोलना चाहिए। इसी तरह उनके पास एक आलम दीन आए एक शेख के पास, तो उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। अब क्वेश्चन करने का अंदाज उनका सही नहीं था। अब जाहिर बात आलम दीन, उनका अंदाज सही ना हो तो वहां पे तो ज्यादा तरबियत की जरूरत। तो उन्होंने इस चीज को फौरन नोटिफाई किया कि इतने आपने साल लगाए, 8 साल पढ़ते रहे, और फिर आपका अंदाज इस तरह का, यानी बेअदबी से आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किताबों ने आप पे कोई असर नहीं किया। आपको ये अगर इल्म सीखा है तो अदब भी सीखे कि सवाल करना कैसे, किस बगैर सोचे समझे आप सवाल कर रहे हैं, कि मैं किस अल्फाज से किस अदब के साथ सवाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने फौरन जो आलम थे उन्होंने एहसास कर लिया, उन्होंने सॉरी किया कि ठीक है हाँ मैं गलती हो गई, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, तो इस बार मुझे माफ़ कर दे। तो उन्होंने फिर उस क्वेश्चन को रिफ्रेस किया, दूसरे अच्छे अंदाज में किया उस क्वेश्चन को। तो उन्होंने फिर शेख ने उन्हें कहा कि देखें अब आप इसे रिफ्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है, और रिफ्रेस करके अब आपका अदब भी सही है, आपके अल्फाज भी सही है, आपका तरीका भी सही है, तो इसका मतलब है आपको पता है कि कैसे बात करनी है। लेकिन सिर्फ उससे मसला ये है कि आप इस चीज़ को मामूली समझते हैं। और फिर उन्होंने लोगों को भी ये बात कही जो मौजूद थे कि ये है इंसान की केयरलेसनेस, कि उसे पता होता है कई चीज बार इल्म में होती है उसके बाद, लेकिन वो केयरलेस होता है उस मामले। तो ये केयरलेस एटीट्यूड इंसान का खत्म होना चाहिए। दीन सारे का सारा ये है कि इंसान जिंदगी में सीरियस हो जाए। ये केयरलेसली जो इंसान काम करता है हर चीज को, इबादत से लेके मामलात से लेके, तो गुफ्तगू मुआशरत का एक हिस्सा है, तो जो डेली लाइफ गुजारने का हिस्सा है, तो इस सारी चीजों में केयरलेस एटीट्यूड। हालांकि बहुत सारी चीजें पता होती है इंसान को, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, और जब उसे तंबीह की जाती है या अल्लाह की तरफ से कोई तंबीह आती है, तब वो ठीक हो जाता है, तब वो सीधा हो जाता है, तब उसे एहसास हो जाता है। तो पहले क्यों नहीं वो ऐसे कॉशियस होकर बात करता या कॉशियस होकर वो अमल करता। तो ये एक्चुअली इंसान की तरबियत, तरबियत दो अंदाज से होती है, एक इल्म कि अगर किसी की नॉलेज में एक चीज़ नहीं है उसके नॉलेज में लाई जाए, और दूसरा उस नॉलेज को जिंदगी के अंदर अप्लाई करना, ये सिखाया जाता। वो मामूली समझता रहता है कि नहीं नॉलेज तो है, अमल नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो ये जो केयरलेस एटीट्यूड है ये एक्चुअली खत्म होना चाहिए, और ये इंसान को सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये जितनी डिस्कशन यहाँ पे करते रहते हैं और कर रहे हैं, तो इसका भी यही एम है कि नॉलेज में आए, और दूसरा ही हम इस चीज़ पे थोड़ा सीरियस हों इस सारी बात में। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता हो, लेकिन सीरियसली हम इस मामले में प्रैक्टिकली जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें। और अगर इंसान की इस फितरत और इस तरीके को, आदत को देखा जाए तो ये आम है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को पता होता है कि पढ़ना है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो पढ़ाई में सीरियस होते हैं। इसी तरह हम सबको ज़िंदगी में पता है कि हमारा एक ख़ास एम है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, नेकी क्या फ़ायदे हैं, गुनाह के क्या नुकसान है, लेकिन हमारा एटीट्यूड सीरियस नहीं होता अक्सर। मतलब कि गुनाह हो रहे होते हैं केयरलेसनेस की वजह से, नेकियां नहीं हो रही होती केयरलेसनेस की वजह से। तो अपनी तबीयत के अंदर एक सीरियस एटीट्यूड ले आना, एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड ले आना कि मैं जिंदगी में अमल में आगे बढ़ूं, सिर्फ इल्म में ना आगे बढ़ूं, ये चीजें सीखने की और ये चीजें फिक्र, इस चीज में फिक्रमंद होने की जरूरत है। अब इस चीज में लेक्चर दिए जा सकते हैं कि गुनाह कि क्या नुकसान है, गुनाह कैसे खत्म हो सकते हैं, और उसमें जो एक बेहतरीन तरीका है वो अल्लाह का जिक्र है। कसरत जिक्र इंसान के अंदर से बातनी गुनाह खत्म कर देती है। अब ये चीज मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी की जा चुकी, उसकी वजह से मुख्तलिफ बुजुर्गों से औलिया से ताल्लुक भी जुड़ चुका, लेकिन अब फर्क क्या है इंसानों में प्रैक्टिकली एप्लीकेशन का, कि कौन जिक्र कर रहा है। अब जिक्र करता ही नहीं इंसान तो क्या उसका फायदा मिल रहा है। अब वो बयान सालों को सुनता रहता है कि हाँ इसके फायदे, हाँ इसके फायदे, हाँ इसके फायदे, तो क्या उसकी तरक्की रूहानी होनी, क्या उसके आगे बढ़ना। तो ये अपनी जिंदगी में चेंज लानी चाहिए कि जो सुने, जो इल्म में आए उस पर अमल शुरू हो, जो इल्म में आए उस पर अमल शुरू हो, जो इल्म में आए उस पर अमल शुरू हो। सीरियसली इंसान जिंदगी को ले, जिंदगी मजाक नहीं है, जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। जो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं खेल तमाशा, जो इसको यानी कि एम ना समझेगा उसके लिए तो खेल तमाशा है, लेकिन जो इसकी जिंदगी का एम समझ जाएगा उसके लिए कोई कोई खेल तमाशा नहीं है। ये बहुत सीरियस बातें हो रही हैं जिंदगी के हवाले से। तो हर दिन इम्प्रूवमेंट हो, हर दिन इम्प्रूवमेंट हो, हर दिन इम्प्रूवमेंट हो। एक ग्राफ रखे इंसान अपना कि ये मेरी जिंदगी में कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, आज का दिन, कल का दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। इंसान दुनिया में सोचता है, अपने अपना एनालिसिस करता है कि वहां मैंने MBBS किया, फिर मेरे पांच, फिर उसके बाद हाउस जॉब की, फिर हाउस जॉब के बाद 5 साल स्पेशलाइजेशन की, फिर मैं अब इस पोस्ट पे हूँ, 10 साल बाद मैं इस पोस्ट पर पहुंच चुका। वहां पे एक पूरा एनालिसिस चल रहा होता है, और किसी ने पूछा जाए कि आप अपने आपको 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, तो वो बताता है मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर होना चाहिए, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और दुनिया दीन के अंदर क्या हमें बाकी ऐसा एनालिसिस करते हैं कि आज मेरा इनका लेवल ये है, 10 साल बाद मेरा इनका लेवल ये होना चाहिए, आज तकवा का लेवल ये है, 10 साल बाद ये लेवल होना चाहिए, आज सुन्नत का लेवल ये है, 10 साल बाद ये होना चाहिए। तो इस तरह ये एटीट्यूड दीन में भी होना चाहिए। तो उसमें ये एक चीज़ है कि हम जो है वीकली गैदरिंग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि नॉलेज थोड़ा रिवाइव हो, अगर नहीं है तो आ जाए, अगर है तो रिवाइज हो जाए। मतलब ये कि इंसान में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन ये भी तो देखे आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि कई बार यही देखा गया है कि वो सालों गुजर रहे होते हैं और डिस्कशन चल रही होती है और इम्प्रूवमेंट निल होती है, वही बात रिपीट इंसान कर रहा होता है। उसकी वजह ये है कि उसको बस एक बरकत सवाब का एक जरिया समझा होता है, हालांकि ये एक पूरा जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए किया जाता है ये सारा काम। तो अल्लाह ताला हमारे एटीट्यूड को सही कर दे, हमारी ज़िंदगी के जो रुख है उसको सही कर दे, हमारे इल्म को अमल में तब्दील कर दे, आदाब ज़िंदगी हमें सिखा दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सब कुछ झुका लें, जो कुछ दुनिया में उसे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं, अपनी तवज्जो अपने कल्ब पे ले जाएं, जहन की सारी ख्यालात को फोकस कर लें अपने कल्ब पे, और ये सोचें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, और मेरी जो दिल की स्याहियाँ हैं, जुल्मतें हैं, जो गुनाह कर कर करके मैंने दिल में जमा कर ली, वो दूर हो रही हैं। जैसे जिक्र कल्बी कहते हैं हदीस पाक में, जिक्र जिक्र कल्बी, जिक्र खफी कहा गया, खामोश जिक्र, खामोशी से अल्लाह को याद करना। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں انسان بنایا، یا اللہ پاک انسانوں بھی چنا اور ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. یا اللہ پاک اور پھر رحمت فرمائی کہ دین کو محفوظ رکھا اور ہم تک وہ باتیں پہنچا دیں کہ جو آپ کے قریب کرنے والی ہیں، جو آپ تک پہنچانے والی ہیں، جو زندگی کا طریقہ سکھاتی ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک اب ہماری طرف سے جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس طریقے کو سیکھنے میں، ان ساری باتوں کو سیکھنے میں اور پھر سیکھ کے عمل نہ کرنے میں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہماری زندگی کے طرز عمل اور روش کو بدل دے. یا اللہ پاک اس بے پرواہی والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ پاک اس بے عملی والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ پاک اس کیجول ایٹیٹیوڈ سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ پاک سستی اور قاعدی سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ پاک ہمیں جس طرح، یا اللہ پاک ہم دنیا کے معاملے میں چاق و چوبند ہیں، دنیا کے معاملے میں پروگریسو ہیں، یا اللہ پاک دنیا کے معاملے میں اونچے سے اونچے سوچ رکھنے والے ہیں، ویسے ہی یا اللہ پاک ہمیں دین میں بھی پروگریسو بنا دے، آگے بڑھنے والا بنا دے، سب کا لے جانے والا بنا دے. یا اللہ پاک دین میں گزارے والا ایٹیٹیوڈ اور دنیا میں معیار والا ایٹیٹیوڈ اس، یا اللہ پاک دوغلے پن سے محفوظ فرما دے، اس دوغلے پن سے یا اللہ پاک ہمیں نکال دے. یا اللہ پاک جس طرح ہم دنیا میں معیار چاہتے ہیں، ہمیں دین میں بھی معیار والی کیفیت نصیب فرما دے. دین میں بھی ہم معیار کو دیکھیں اور اپنی نمازوں کے معیار کو بڑھائیں، اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھائیں، اپنے سنت کے معیار کو بڑھائیں، اپنے علم کے معیار کو بڑھائیں، اپنے اخلاق کے معیار کو بڑھائیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں آگے بڑھنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ پاک پیچھے ہٹنے والے اور سٹیٹک رہنے والوں میں سے نہ بنا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک جس طرح یہ وقت آگے بڑھ رہا ہے، یا اللہ پاک جس طرح اس ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، یا اللہ پاک اسی طرح ہماری زندگی میں اپنی ملاقات کی تیاری میں بھی آگے بڑھنے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہماری دن بہ دن ہمارے اخلاق بہتر ہوں، دن بہ دن ہماری نمازیں بہتر ہوں، دن بہ دن ہماری عبادات بہتر ہوں. یا اللہ پاک ہر روز اپنے سے قرب میں ہمیں آگے بڑھا، ہر روز اپنے تعلق میں ہمیں آگے بڑھا. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک یہ 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 چیز ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک غفلت سے ہمیں نکال دے، ذکر والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ بنے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک جو ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا کہ اب یا اللہ پاک ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی نیک کام کرنے کی، اب ہمت ہی نہیں ہوتی یا اللہ پاک کوئی نیکی میں آگے بڑھنے کی. یا اللہ پاک غفلت، سستی، کاہلی اوپر چھائی رہتی ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک ہمیں چستی نصیب فرما دے، ہمیں تہجد میں اٹھنا آسان فرما دے، فجر میں اٹھنا آسان فرما دے. یا اللہ پاک اچھے اخلاق، مسکراتے چہرے سے بات کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، نرم الفاظ میں بات کرنا آسان فرما دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنا، دوسروں کے لیے وبال جان نہ بنا. یا اللہ پاک دوسروں کے کام آنے والا بنا، دوسروں کے یا اللہ پاک مصیبت بننے والا نہ بنا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک دین کے ہر شعبے میں، یا اللہ پاک عبادات کو ہم، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، ہر شعبے میں یا اللہ پاک ہمیں سب سے اوپر رہنے والوں میں سے بنا، کاملین میں سے بنا. یا اللہ پاک آگے بڑھنے والوں میں سے بنا، مقربین میں سے بنا. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جس طرح آپ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ کچھ آپ کے مقرب ہوتے ہیں اور کچھ صالح ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. یا اللہ پاک جس طرح ہم دنیا میں عام بندہ بن کے نہیں بلکہ ہر چیز میں معیار چاہتے ہیں، اسی طرح یا اللہ پاک ہم تیرے قرب میں بھی آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جن کا تو نے تذکرہ کیا قرآن میں کہ تیرے مقربین ہیں. یا اللہ پاک ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، ہمیں بھی ایسے کام کرنے والا بنا کہ ہم تیرے مقرب بن جائیں. یا اللہ پاک وقت تھوڑا ہے، زندگی بہت کم رہ گئی، یا اللہ پاک بہت وقت ضائع کر دیا، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اب عمل پہ لگا دے اور آگے بڑھنے والا بنا دے. یا اللہ پاک مقربین میں سے بنا دے. یا اللہ या लबा एस एस बाब में या कर कि या लबा मैं आगे बढ़े, एस एस बाब से मैं दूर कर जो तुझसे दूर करने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर कर, ऐसी महफिलों से दूर कर, ऐसे या अल्लाह गफलत की माहौल से दूर कर जो तुझसे दूर करने वाला है। अपनी रहमत से या अल्लाह पाक मौत तक हमें आखिरत की फिक्र में आगे बढ़ने वाला बना। कभी भी गफलत हमारे ऊपर हावी ना होने दे, कभी भी नफ्स शैतान हमारे ऊपर हावी ना होने दे। या अल्लाह पाक जो लोग मुश्किलों परेशानियों गमों में मुबतला हैं, अपनी रहमत से उनके गम मुश्किलें परेशानियाँ आसान फरमा दे। जो माल की वजह से परेशान हो इसके हलाल नसीब फरमा। जो जिनके औलाद नहीं वो परेशान, उनको या अल्लाह पाक ने साले औलाद नसीब फरमा। और या अल्लाह पाक जो साहिब औलाद है अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उनके औलाद को नेक साले बना। या अल्लाह पाक उनके ईमान जान इज्जत माल आबरू की हिफाजत फरमा। बुरे दोस्तों बुरे लोगों बुरी महफिलों से उन्हें महफूज फरमा। या अल्लाह पाक उनकी उनकी या अल्लाह उनको वालदेन की आंखों की ठंडक बना। और या अल्लाह पाक उनको वालदेन के लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह पाक जो सेहत की वजह से परेशान, या अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर फरमा। जो जिस्मानी सेहत से परेशान उनको जिस्मानी सेहत नसीब फरमा। जो रूहानी बीमारियों से परेशान शहवत गुस्से तकब्बुर कीने से, या अल्लाह पाक उनकी उन बीमारियों को शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, आफियत के साथ मौत नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा, आफियत के साथ कब्र में रहना नसीब फरमा, आफियत के साथ हशर का मामला फरमा के बिला इजाब बिला इस्तेकाक जन्नत फिरदौस नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा, खुसूसन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी खदशात से उसे महफूज फरमा। या अल्लाह पाक जहाँ जहाँ मुसलमान कमज़ोर हैं अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उनकी इज्जत जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जो ईमान की हालत में फौत हो चुके अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमा, जिनकी मगफरत फरमा दी उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी करने वालों में शामिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
आमीन।